ذرا سوچئے، مطلب ہم جس کتاب کو ہزاروں سالوں سے ایک دم ٹھوس اتہاس مانتے آ رہے ہیں نا، کہ فلاں دن یہ ہوا، اس کے بعد ٹھیک یہ ہوا، اور دنیا بس ایسے ہی آگے بڑھی۔
ہاں بالکل، ایک ٹائم لائن کی طرح۔
ایگزیکٹلی، لیکن کیا ہو اگر وہ کوئی ٹائم لائن ہوئی نا؟ مطلب کیا ہو اگر جسے ہم کیلنڈر کی طرح پڑھ رہے ہیں وہ اصل میں محض ایک پراچین لیکھک کی ایک بے حد خوبصورت کویتا یا کہانی کہنے کا ایک کلاتمک طریقہ ہو؟
یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔
بالکل، اور آج کی ہماری اس وسترت چرچا میں ہم اتہاس اور کلپنا کے بیچ کی اسی دھندلی لکیر پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم پراچین گرنتھوں کی دنیا میں اتریں گے، خاص طور پر اتپتی یا جسے ہم جینیسس کہتے ہیں اس کے پہلے ادھیائے کو لے کر جو ساہتیہ اور واستوکتا کی بحث ہے اسے کھنگالیں گے،
اور اس کے ساتھ ہی ہم میسوپوٹامیا کی ایک بے حد رہسیہمئی کہانی اینوما ایلش کے پنوں کو بھی پلٹیں گے۔
صحیح کا، ہمارا ادیشی یہ جانچنا ہے کہ ہم پرانی سوچناؤں کو اصل میں کیسے پروسیس کرتے ہیں۔ تو اوکے، لیٹس انپیک دس، کیونکہ یہ وشے سچ میں ہماری کئی بنیادی دھارناؤں کو جھکجھوڑنے والا ہے۔
بالکل، اور واٹس فیسینیٹنگ ہیئر از کہ یہ چنوتی اور بھی بڑی ہو جاتی ہے جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ پوری بحث صرف کسی ایک دھرم یا ایک پرانی کتاب کے بارے میں نہیں ہے۔
تو پھر یہ کس بارے میں؟
مطلب یہ اصل میں اس بارے میں ہے کہ پوری دنیا میں پراچین ریکارڈز کو، چاہے وہ کسی بھی سبھیتا کے ہوں، کیسی پڑھا جاتا ہے۔ جب ہم ہزاروں سال پرانی کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔
ہم اسے اپنے آج کے چشمے سے دیکھنے لگتے ہیں نا؟
ہاں ایک دم سے، ہم اسے اپنی آج کی آدھونک سوچ، اپنی 21ویں صدی کی ویگیانک ٹائم لائن سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دور کے لیکھکوں کے کہانی کہنے کے طریقے، ان کے گہرے ادیشیہ اور ان کی ساہتک شیلیاں ہمارے آج کے نیوز پیپر یا ویگیان کی کتابوں سے بالکل الگ تھیں۔
اور مجھے لگتا ہے اس ٹکراؤ کا سب سے بڑا ادھارن ہمیں جینیسس کے اس مشہور ورنن میں ملتا ہے جہاں بتایا گیا ہے کہ پوری سرشٹی کا نرماڑ 6 دنوں میں ہوا۔
بالکل،
اب ایک عام انسان جب اسے پڑھتا ہے تو اس کے دماغ میں 24 گھنٹے والے 6 دن آتے ہیں، مطلب گھڑی کی ٹک ٹک والے دن۔
ہاں، سوموار منگلوار جیسے دن۔
ایگزیکٹلی، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ سچ مچ کے 24 گھنٹے والے دن تھے، یا پھر یہ صرف چیزوں کو ایک کرم میں رکھنے کا ایک بھویہ کہانی کو آکار دینے کا طریقہ تھا؟
دیکھیے، اسی گتھی کو سلجھانے کے لیے ودوان ایک وچار سامنے رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ اتہاس کو درج کرنے کا نہیں بلکہ ایک خاص طریقے سے جانکاری کو سجانے کا طریقہ تھا۔ اسے وہ ایک تکنیکی نام دیتے ہیں، ساہتیک ڈھانچہ پریکلپنا یا لٹری فریم ورک ہائپوتھیسس۔
اچھا، تو یہ فریم ورک ہائپوتھیسس کام کیسے کرتا ہے؟
کیونکہ رابرٹ نیومن جیسے ودوان اس پر بہت گہرائی سے وچار کرتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں کہ اس پریکلپنا کے انوسار جینیسس کی یہ 6 دن کوئی واستوک سمے سیما نہیں ہے۔
مطلب وہ اصلی دن نہیں تھے؟
ان کے انوسار نہیں، لیکھک نے اسے ایک ساہتیک یکتی یا لٹری ڈیوائس کے روپ میں استعمال کیا ہے۔ گھٹنائیں نشچت روپ سے ایک کرم میں ہوئی ہوں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اسے ایک سٹاپ واچ لے کر پڑھنا چاہیے۔
سمجھ رہا ہوں۔
مطلب لیکھک کا مکھیہ ادیشیہ یہ بتانا تھا کہ نرماڑ کیسے ایک ویوستھت طریقے سے ہوا، اور 7ویں دن ایک پرم شانتی یا کلائمیکس آیا، نہ کہ یہ ثابت کرنا کہ پہلے دن کتنے گھنٹے لگے اور دوسرے دن کتنے۔
یہ تو بہت ہی دلچسپ نظریہ ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی سے ایک الہارن لے سکتے ہیں۔
بالکل، بتائیے۔
مان لیجئے آپ کے پاس اپنے بچپن کی چھٹیوں کا ایک بہت پرانا فوٹو البم ہے۔ اب اس البم کو تاریخوں کے حساب سے سجانے کے بجائے، جیسے سوموار کی تصویریں پھر منگلوار کی تصویریں، آپ نے اسے تھیم کے حساب سے سجا دیا۔
اچھا، مطلب کرونولوجیکل نہیں؟
ہاں، ایک پنے پر صرف سمندر تٹ کی تصویریں لگا دیں، دوسرے پنے پر صرف پہاڑوں کی، اور تیسرے پر پریوار کے ساتھ کھانے پینے کی۔ اب تصویریں پوری طرح سے واستوک ہیں، گھٹنائیں بھی سچ ہیں، لیکن انہیں پیش کرنے کا جو ڈھانچہ ہے، جو فریم ورک ہے، وہ سمے کے انوسار نہ ہو کر تھیم پر آدھارت ہے۔
بالکل صحیح انالوجی ہے۔ یہ ڈھانچے والی بات ہی اس پوری بحث کا مول ہے۔ گھٹنائیں واستوک ہو سکتی ہیں، لیکن انہیں ہمارے سامنے جس پیکٹ میں پیش کیا گیا ہے وہ پیکٹ کلاتمک ہے۔
لیکن یہاں مجھے ایک بہت بڑی سمسیا نظر آتی ہے۔
کیسی سمسیا؟
اگر ہم اس ایتیہاسک وورن کو صرف ایک ساہتیک شیلی یا تھیم آدھارت البم مان لیں، تو کیا ہم ایک بہت ہی خطرناک دروازہ نہیں کھول رہے ہیں؟
مطلب آپ کس خطرے کی بات کر رہے ہیں؟
میرا مطلب ہے، اگر جینیسس کے دن صرف ایک ساہتیک یکتی ہیں، تو کل کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پراچین اتہاس کی کوئی بھی بڑی گھٹنا، کوئی بھی یدھ، या कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति सिर्फ एक कथा या रूपक है।
एक मेटाफर है।
हाँ, हम इंसान कहानियों पर अपनी पूरी जिंदगी का रूटीन टिका देते हैं। अगर वो कहानी ही रूपक निकली तो हमारा इतिहास और हमारी वास्तविकता किस पर टिकी है?
ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और यही वो जगह है जहाँ डॉक्टर रॉबर्ट वेनोय जैसे विद्वान इस फ्रेमवर्क हाइपोथेसिस पर बहुत कड़ा प्रहार करते हैं।
अच्छा, उनका क्या तर्क है?
वे कहते हैं कि हम इन कहानियों को एक वैक्यूम में नहीं पढ़ सकते। वे इसे एक बहुत बड़े और व्यवहारिक संदर्भ से जोड़ते हैं। जैसे बाइबल के ही एक्सोडस 20 का उदाहरण देखिए, जहां 10 आज्ञाओं का जिक्र है।
हाँ, 10 कमांडमेंट्स।
बिल्कुल, उसमें स्पष्ट रूप से मानव समाज के लिए एक नियम बनाया गया है कि मनुष्यों को 6 दिन काम करना चाहिए और 7वें दिन आराम करना चाहिए। और इसका कारण क्या बताया गया? कारण ये दिया गया है कि रचयिता ने भी 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया।
अरे, यानी मानव व्यवहार और हमारे काम करने के तरीके को सीधे तौर पर एक ऐतिहासिक घटना से जोड़ा जा रहा है।
एग्जैक्टली, डॉक्टर वेनोय का तर्क यही है कि इंसान के 6 दिन काम करने और 1 दिन आराम करने का ये पूरा सामाजिक पैटर्न इस वास्तविकता पर टिका है कि अतीत में असल में ऐसा हुआ था।
तो अगर वो असली घटना नहीं थी
तो फिर अगर वो 6 दिन का काम वास्तविकता नहीं है बल्कि महज एक साहित्यिक कल्पना या किसी लेखक की रची हुई शैली है, तो फिर इंसान के आराम करने का आधार क्या रह जाता है?
कुछ भी नहीं।
हाँ, फिर तो मनुष्य किसी ईश्वरीय कार्य का अनुसरण नहीं कर रहा है बल्कि किसी प्राचीन लेखक द्वारा रची गई एक कविता की नकल कर रहा है। ये उस पूरे नियम के वास्तविक आधार को ही खोखला कर देता है।
यार, ये तो पूरा नजरिया ही पलट देता है। अगर आधार ही एक कलात्मक ढांचा है तो उस पर टिकी हुई जीवन शैली भी महज एक कल्पना की नकल बन जाती है।
बिल्कुल।
और जब हम समय, निर्माण और वास्तविकता के इस भंवर में फंसते हैं ना, तो हमारे स्रोतों में एक और बहुत ही अजीबोगरीब सिद्धांत उभर कर आता है।
आप किस सिद्धांत की बात कर रहे हैं?
देखिए, जब विज्ञान ने ये बताना शुरू किया कि ब्रह्मांड और पृथ्वी करोड़ों साल पुराने हैं, तो कुछ लोगों ने एक नया विचार पेश किया। क्या ऐसा हो सकता है कि ये पूरी दुनिया हाल ही में बनी हो, लेकिन उसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया हो कि वो करोड़ों साल पुरानी दिखे?
ओह हाँ, ये निर्मित आयु या बिल्ट इन एज का सिद्धांत है। अपीयरेंस ऑफ एज भी कहते हैं।
बिल्कुल।
ये तब बहुत तेजी से सामने आया जब विज्ञान और धर्म ग्रंथों की टाइमलाइन आपस में बुरी तरह टकराने लगी, तो कुछ विचारकों ने दोनों को सही साबित करने के लिए ये बीच का रास्ता निकाला।
Here's where it gets really interesting. इसे समझने के लिए मुझे एक वीडियो गेम की याद आ रही है।
अच्छा, वो कैसे?
मान लीजिए आपने अभी अभी एक नया वीडियो गेम खरीदा और उसे स्टार्ट किया। आपका कैरेक्टर गेम में पहली बार स्पॉन होता है। जैसे ही वो स्क्रीन पर आता है, उसके चेहरे पर एक पुराना घाव होता है, उसकी इन्वेंटरी में इस्तेमाल की हुई पुरानी तलवारें होती हैं।
हाँ, और गेम आपको एक पूरी बैक स्टोरी बताता है।
बिल्कुल, कि उसने पिछले 10 सालों में क्या क्या किया है। लेकिन असलियत में वो कैरेक्टर और वो पूरी दुनिया महज 2 सेकंड पहले कंप्यूटर के कुछ कोड से जनरेट हुई है।
बहुत ही सटीक एनालॉजी है।
तो क्या इस सिद्धांत के अनुसार हमारी दुनिया भी एक ऐसे ही कैरेक्टर की तरह है?
देखिए, डॉक्टर वेनोय और अन्य कई दार्शनिकों के अनुसार ये तर्क सुनने में जितना आकर्षक लगता है, असल में ये एक बहुत बड़ी दार्शनिक खाई है।
दार्शनिक खाई मतलब?
दर्शन शास्त्र में इसे कहते हैं कि ये तर्क प्रूव्स टू मच, यानी ये बहुत कुछ साबित कर देता है।
वो कैसे?
अगर आप ये मान लें कि पृथ्वी एक अंतर्निहित पुरानेपन के साथ बनी है, कि पेड़ों में जन्म से ही छल्ले थे या तारों की रोशनी रास्ते में ही बनी थी, तो फिर आप किसी भी चीज की असली उम्र तय नहीं कर सकते।
हाँ, बात तो सही है।
अगर ये दुनिया पुरानी दिखने के लिए बनी है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये 5000 साल पहले बनी थी? शायद ये दुनिया सिर्फ 5 मिनट पहले या महज 2 सेकंड पहले बनी हो।
1 मिनट, तो हम जो भी यादें लेकर बैठे हैं, जैसे कि मैंने सुबह क्या नाश्ता किया था, वो सब भी दुनिया बनने के साथ ही मेरे दिमाग में बस अपलोड की गई हो?
बिल्कुल, अगर सब कुछ सिर्फ दिखने के लिए बनाया गया है, तो हमारी यादें, हमारा इतिहास, सब कुछ एक भ्रम हो सकता है।
ये तो बड़ा डरावना विचार है।
एडी वाइट की एक बहुत ही मशहूर किताब है, द वॉरफेयर ऑफ साइंस एंड क्रिश्चियनिटी।
उसमें मिस्र की सभ्यता और जीवाश्मों का यानी फॉसिल्स का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है।
क्या उदाहरण है वो? जब वैज्ञानिकों को जमीन के नीचे डायनासोर की हड्डियाँ और प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिलने लगे, तो इस सिद्धांत को मानने वालों ने अजीबोगरीब तर्क दिए। उन्होंने कहा है कि ये पुरानी सभ्यताएं और जीवाश्म किसी क्रमिक विकास या लाखों सालों का नतीजा नहीं है।
तो फिर वो आए कहां से?
उन्होंने कहा कि वे अचानक ही जमीन के नीचे अपने पूर्ण विकसित और पुराने रूप में अस्तित्व में आ गए थे।
क्या बात कर रहे हैं, मतलब भगवान ने जमीन के नीचे डायनासोर की हड्डियां सिर्फ इसलिए रख दी ताकि भविष्य में इंसान उन्हें खोजें और सोचे कि दुनिया बहुत पुरानी है।
हाँ, यही तर्क था उनका।
ये तो विज्ञान के पूरे अस्तित्व को ही मजाक बना देता है।
बिल्कुल, विज्ञान के साथ साथ ये धर्मशास्त्र के लिए भी एक बहुत बड़ा संकट है। अगर हम इस बात को बड़े संदर्भ से जोड़ें, तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि पुरातत्व विज्ञान और जियोलॉजी की सारी खोजें झूठी हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये अप्रत्यक्ष रूप से ये साबित करता है कि रचयिता एक धोखा देने वाला या डिसेप्टिव है। वो जानबूझकर ऐसे सुराग छोड़ रहा है जो मनुष्यों को गुमराह करें।
और कोई भी धर्म ये तो नहीं मानेगा।
बिल्कुल नहीं, ज्यादातर गंभीर विद्वान इसे सिरे से नकार देते हैं, क्योंकि कोई भी धर्म एक धोखा देने वाले ईश्वर की कल्पना नहीं करता। ज्ञान और सच्चाई की खोज का पूरा आधान ही टूट जाएगा अगर स्रोत ही धोखेबाज हो।
हाँ, ये समझ में आता है। कोई भी ये मानकर नहीं जी सकता कि उसका पूरा अस्तित्व एक एक ब्रह्मांडीय प्रैंक है।
सही कहा।
तो चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये सब वास्तविक इतिहास है, कोई वीडियो गेम या धोखा नहीं। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है। जेनेसिस को पारंपरिक रूप से मूसा द्वारा लिखा गया माना जाता है ना?
हाँ, परंपरा तो यही मानती है।
लेकिन मूसा तो ब्रह्मांड के निर्माण के समय मौजूद ही नहीं थे, तो जो इंसान वहाँ था ही नहीं, उसे इतने सटीक तरीके से कैसे पता चला कि पहले दिन क्या हुआ और दूसरे दिन क्या?
ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। प्राचीन साहित्य का अध्ययन करने वाले हर रिसर्चर को ये सवाल परेशान करता है कि प्राचीन लेखकों को जानकारी आखिर कैसे मिलती थी।
तो फिर क्या जवाब है इसका?
प्राचीन काल में इसके कई अलग अलग तरीके माने जाते थे। कुछ मामलों में माना जाता था कि जानकारी सीधे संवाद या रहस्योद्घाटन से आई। कुछ लेखकों ने दावा किया कि उन्हें विजन्स या स्वप्न आए।
ओके।
लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही तार्किक और जमीनी तरीका भी था, ऐतिहासिक रिसर्च और पुराने दस्तावेजों का अध्ययन।
यानी वे लोग भी हमारी तरह ही पुराने आर्काइव्स खंगालते थे।
बिल्कुल, बाइबल में ही इसके प्रमाण मौजूद हैं। लूक की किताब की शुरुआत में लेखक बड़ी स्पष्टता से बताता है कि उसने घटनाओं को लिखने से पहले चश्मदीद गवाहियों और पुराने दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया है।
मतलब वो बकायदा एक इतिहासकार की तरह काम कर रहा था।
हाँ, इसी तरह किंग्स जैसी किताबों के लेखकों ने पुराने शाही रिकॉर्ड्स का सहारा लिया। लेकिन उत्पत्ति या जेनेसिस के लेखक के बारे में यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें जानकारी कहां से मिली।
तो फिर उन पर भरोसा कैसे किया गया अगर सोर्स ही नहीं पता?
यहीं पर धार्मिक विश्वास और वर्बल इंस्पिरेशन का सिद्धांत आता है। जो लोग इन ग्रंथों को पवित्र मानते हैं, वे कहते हैं कि लेखक ने जानकारी चाहे पुराने दस्तावेजों से जुटाई हो या किसी मौखिक परंपरा से सुनी हो, लेकिन जब वो उसे लिख रहा था तो एक उच्च शक्ति ने यह सुनिश्चित किया कि अंतिम लिखावट पूरी तरह से त्रुटिहीन और सटीक हो, यानी मानवीय शोध और ईश्वरीय संपादन का एक मिलाजुला रूप।
सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब है कि जानकारी के स्रोत कई हो सकते हैं, और इसी स्रोत की तलाश में इतिहास में एक ऐसा दिन आता है जिसने दुनिया भर के विद्वानों की नींद उड़ा दी।
हाँ, 1875 की बात कर रहे हैं ना?
बिल्कुल, साल था 1875। जॉर्ज एडम स्मिथ नाम के एक व्यक्ति ने मेसोपोटेमिया, जो आज का इराक है, वहां की खुदाई में मिली मिट्टी की पट्टियों या क्ले टैबलेट्स के बारे में दुनिया को बताया।
और उन पट्टियों ने तो तहलका ही मचा दिया था।
हाँ, क्योंकि उनमें सृष्टि के निर्माण की एक ऐसी कहानी दर्ज थी जो जेनेसिस से बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन वो बेबीलोन की सभ्यता से आ रही थी। यहीं से पैन बेबीलोनियन स्कूल नाम के एक पूरे नए वैचारिक आंदोलन की शुरुआत होती है।
उस समय के अकादमिक जगत में ये सचमुच एक धमाका था, और इस धमाके की गूंज को सबसे ज्यादा बढ़ाया फ्रेडरिक डेलिच नाम के एक असीरियोलॉजिस्ट।
उन्होंने क्या किया?
उन्होंने 1902 में बैबल और बाइबल नाम से एक सीरीज निकाली, और बाद में 1920 में द ग्रेट डिसेप्शन यानी महान धोखा नाम से एक और आक्रामक किताब छापी।
नाम से ही लग रहा है कि उन्होंने कोई बड़ा दावा किया था।
बहुत बड़ा दावा। फ्रेडरिक का दावा बहुत ही सीधा और चुभने वाला था। उनका कहना था कि ओल्ड टेस्टामेंट कोई ईश्वरीय या मौलिक ग्रंथ है ही नहीं।
क्या?
हाँ, उनका कहना था कि ये पूरी तरह से बेबीलोन की प्राचीन कहानियों और मिथकों की भद्दी नकल है। उन्होंने आरोप लगाया कि इजरायलियों ने बेबीलोन की कहानियों को चुराया, अपने हिसाब से देवताओं के नाम बदले और उसे अपना पवित्र इतिहास बता दिया।
मतलब उन्होंने पूरी किताब को ही चोरी का माल बता दिया।
बिल्कुल, उनके अनुसार ये पूरा दस्तावेज गलतियों और धोखे से भरा हुआ है।
पता है, इस पूरे विवाद में एक मानवीय पहलू ऐसा है जो मुझे किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है।
आप उनके पिता की बात कर रहे हैं ना?
हाँ, फ्रेडरिक डेलिच के पिता का नाम था फ्रांस डेलिच। फ्रांस अपने समय के बहुत ही सम्मानित उच्च विचार वाले और बेहद कंजर्वेटिव विद्वान थे।
हाँ, वे बाइबल के बड़े समर्थक थे।
उन्होंने अपना पूरा जीवन बाइबल और इन धार्मिक ग्रंथों की प्रामाणिकता को सही साबित करने में लगा दिया। और फिर उनका अपना ही बेटा बड़ा होकर कहता है कि पिताजी, आप जिस चीज की रक्षा कर रहे थे वो सब एक महान धोखा है।
ये सच में बहुत अजीब है,
है ना? एक ही छत के नीचे पले बड़े पिता पुत्र की विचारधारा एक दूसरे के इतने चरम विपरीत कैसे हो सकती है? ये वैचारिक टकराव की एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक केस स्टडी है।
बिल्कुल, ये पीढ़ियों के बीच के उस टकराव को दिखाता है जब नई वैज्ञानिक या पुरातात्विक खोजें पुरानी मान्यताओं से टकराती है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि फ्रेडरिक डेलिच की इस आक्रामक आलोचना की बुनियाद क्या थी। उन्होंने किस आधार पर जेनेसिस को एक नकल करार दिया? उनका सबसे बड़ा और इकलौता हथियार था टाइमलाइन।
उनकी सोच बहुत ही सिंपल थी, जो चीज पुरानी है वही असली होगी और जो बाद में आई है उसने पुरानी की नकल की होगी।
एग्जैक्टली, डेलिच ने यही गणित लगाया, इनुमा एलिश, जिसका अर्थ होता है जब ऊंचाई पर। यह बेबीलोन की कहानी है। विद्वान मानते हैं कि इसकी मूल रचना करीब 1700 से 2000 ईसा पूर्व के बीच हुई होगी।
हालांकि जो पट्टियां हमें मिली हैं वे 1000 ईसा पूर्व की हैं, राइट?
हाँ, बिल्कुल।
और अगर हम जेनेसिस के लेखक मूसा की बात करें तो उनका समय करीब 1400 से 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। मतलब बेबीलोन की कहानी उत्पत्ति से कई सौ साल पुरानी है।
बिल्कुल, डेलिच ने इन तारीखों को आमने सामने रखा और निष्कर्ष निकाला, क्योंकि बेबीलोन की कहानी पुरानी है इसलिए बाद में लिखी गई जेनेसिस ने उसी की नकल की है।
लेकिन यहाँ मैं थोड़ा विरोध करना चाहूंगा।
हाँ, बताइए।
महज उम्र के आधार पर किसी को कॉपीकैट कह देना क्या थोड़ा बचकाना नहीं है? मतलब सिर्फ इसलिए कि कोई किताब पुरानी है, क्या इसका हमेशा यही मतलब होता है कि नई किताब ने पुरानी की ही नकल की है?
ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है।
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों सभ्यताएं किसी एक ही उससे भी पुरानी ऐतिहासिक घटना के बारे में लिख रही हूं, या दोनों ने अलग अलग तरीके से एक ही सच्चाई को अपने अपने नजरिए से बयान करने की कोशिश की हूं?
आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और आधुनिक विद्वानों ने ठीक यही सवाल उठाया है। अलेक्जेंडर हाइडल नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध और सूक्ष्म दृष्टि वाले विद्वान ने अपनी किताब द बेबीलोनियन जेनेसिस में इस पूरी बहस की परतें उधेड़ कर रख दी।
अच्छा, हाइडल ने ऐसा क्या अलग किया जो डेलिच नहीं कर पाए?
हाइडल ने सिर्फ तारीखें नहीं देखी, उन्होंने एनुमा एलिश का असली अनुवाद किया और उसकी गहराइयों में गए कि आखिर उसमें लिखा क्या है। और जब उन्होंने ऐसा किया तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आया।
क्या सच?
उन्होंने पाया कि एनुमा एलिश असल में सृष्टि के निर्माण की कोई कहानी है ही नहीं।
एक मिनट, क्या? लेकिन अभी तो हम पिछले 10 मिनट से उसे बेबीलोन की सृष्टि की कहानी कह रहे थे।
यही तो सबसे बड़ा भ्रम था जिसने डेलिच को गुमराह किया।
अरे बापरे,
एनुमा एलिश कुल 7 मिट्टी की पट्टियों पर लिखी गई एक लंबी चौड़ी कविता है। हाइडल ने बताया कि इस पूरी कविता में सृष्टि या ब्रह्मांड के निर्माण का जिक्र बहुत ही छोटे, लगभग ना के बराबर हिस्से में आता है। इसका मुख्य फोकस दुनिया का निर्माण बताना था ही नहीं।
तो फिर इतनी बड़ी कविता किस लिए लिखी गई थी? उसका असली उद्देश्य क्या था?
उसका मुख्य उद्देश्य था राजनीति और शक्ति प्रदर्शन।
राजनीति उस जमाने में?
बिल्कुल, ये कविता मुख्य रूप से बाबेल के स्थानीय देवता मर्दूक की स्तुति करने और उन्हें मेसोपोटेमिया के अन्य सभी देवताओं से ऊपर स्थापित करने के लिए लिखी गई थी। ये एक तरह का राजनीतिक, धार्मिक, प्रोपेगेंडा या अपोलोजेटिक दस्तावेज था।
लेकिन एक देवता को दूसरे देवताओं से ऊपर साबित करने से उन्हें क्या हासिल होने वाला था?
इसके पीछे विशुद्ध जियोपॉलिटिक्स थी। बेबीलोन के लोग ये स्थापित करना चाहते थे कि क्योंकि उनका देवता मार्दुक सारे देवताओं का राजा है, इसलिए उनका शहर बेबीलोन भी दुनिया के सारे शहरों का राजा है। वे अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता को धर्म का आवरण पहना रहे थे।
ओह, अब समझ में आया।
इसके विपरीत जेनेसिस के पहले अध्याय का स्वर और उद्देश्य बिल्कुल अलग है। वो किसी एक स्थानीय देवता को दूसरे देवताओं से लड़ाकर महान साबित करने की कोशिश नहीं करता। वो बहुत ही शांत और व्यवस्थित रूप से ब्रह्मांड और जीवन की शुरुआत का वर्णन करता है। इसलिए इन दोनों ग्रंथों का मूल उद्देश्य, उनके लिखे जाने का कारण और उनका नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सिर्फ इसलिए कि दोनों में सृष्टि शब्द का इस्तेमाल हुआ है, एक को दूसरे की नकल मान लेना वैज्ञानिक रूप से गलत है।
यार ये तो कहानी को पूरी तरह से पलट देता है। इसका मतलब है कि जब हम किसी प्राचीन स्रोत को पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ उसके शब्दों का शाब्दिक अर्थ नहीं देखना चाहिए।
बिल्कुल नहीं,
हमें ये देखना चाहिए कि उसे लिखने वाले का इरादा क्या था, वो किस राजनीतिक या सामाजिक माहौल में लिखा गया था, और सबसे जरूरी बात, कहीं हम उसे पढ़ते वक्त अपनी खुद की आज की धारणाएं उस पर थोप तो नहीं रहे हैं।
एग्जैक्टली, इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और गहरा निष्कर्ष यही है। प्राचीन स्रोतों को पढ़ना केवल अक्षरों को बांचना नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान, उस समय के ऐतिहासिक संदर्भ और उनकी साहित्यिक शैलियों को डिकोड करने की एक बेहद जटिल प्रक्रिया है।
और अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो सूचनाओं के इस अत्यधिक शोर, जिसे हम इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं, वाले युग में ये चर्चा बहुत प्रासंगिक हो जाती है।
बिल्कुल,
आज हमारे पास हर दिन हजारों आर्टिकल्स, वीडियोज और दावे आते हैं। हम अक्सर बिना उनका संदर्भ जाने, बिना ये समझे कि उन्हें क्यों और किसके फायदे के लिए लिखा गया है, जानकारी को सच मान लेते हैं।
हाँ, लोग हेडलाइन पढ़कर ही सच मान लेते हैं।
सही कहा, प्राचीन ग्रंथों की ये बहस हमें सिखाती है कि हमेशा जानकारी की गहराई में जाना और अपनी खुद की मान्यताओं पर क्रिटिकल थिंकिंग करना कितना जरूरी है।
चाहे वो हजारों साल पुरानी मिट्टी की कोई पट्टी हो या आज सुबह आपके फोन पर आया कोई वायरल न्यूज अलर्ट, कॉन्टेक्स्ट ही राजा है। बिना संदर्भ के हम अक्सर गलत निष्कर्षों पर पहुंच जाते हैं और किसी के प्रोपेगेंडा को अपना इतिहास मान बैठते हैं।
संदर्भ वाकई सब कुछ बदल देता है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब एक बहुत ही चौंकाने वाले विचार पर गौर करें जो इसी संदर्भ की बात से निकलता है।
अच्छा, वो क्या है?
आज हम हजारों साल पहले लिखी गई कविताओं, साहित्यिक ढांचों और राजनीतिक मिथकों को लेकर इतने उलझे हुए हैं ना। हम दिन रात ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सच है और क्या महज एक कहानी है। अब जरा एक छलांग लगाइए और कल्पना कीजिए आज से 3 या 4 हजार साल बाद की।
ओके, जब हम नहीं होंगे।
हाँ, जब भविष्य के आर्कियोलॉजिस्ट्स हमारे आज के युग की खुदाई करेंगे। सोचिए अगर उन्हें हमारा कोई बहुत ही वायरल सोशल मीडिया पोस्ट, कोई बहुत ही तीखा मीम या कोई सटायर आर्टिकल मिल जाए।
अरे बाप रे, वो तो सच में सिर पकड़ लेंगे।
बिल्कुल, क्या वे भी ऐसी ही उलझन में नहीं पड़ेंगे? क्या वे हमारे आज के इन आधुनिक साहित्यिक ढांचों को वास्तविक इतिहास मान बैठेंगे? सोचिए, जब उन्हें इंटरनेट का डेटा मिलेगा तो क्या वे ये निष्कर्ष निकालेंगे कि 21वीं सदी के लोग किसी कार्टून कुत्ते की पूजा करते थे?
हाँ हाँ, डोज मीम की बात कर रहे हैं आप।
हाँ, या वो सोचेंगे कि हमारे पास सच में ऐसी बिल्लियां थी जो अजीबोगरीब भाषाएं बोलती थी और उनके इर्द गिर्द हमारा पूरा समाज घूमता था।
ये तो बहुत ही मजेदार और डरावना दोनों है,
है ना? क्या वे हमारे चुटकुलों और रूपकों को हमारा इतिहास मानकर हमारे युग के बारे में बिल्कुल गलत और हास्यास्पद धारणाएं नहीं बना लेंगे? ये विचार सच में हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम आज इतिहास को कैसे देखते हैं और भविष्य हमें कैसे देखेगा।
सोचने वाली बात है सच में।
खैर, इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं रोकते हैं। अगली बार फिर किसी ऐसी ही गुत्थी को सुलझाएंगे।